करते थे फोटो
इससे कम नहीं हो रही
अक्षर बंद हो जाएंगे
पूरी जरूरी लाइट
ज्योति को याद करो योगी बड़े प्यार से अपने आज का निरंतर याद निरंतर याद की यात्रा निरंतर ज्ञान स्वरूप निरंतर धारणा और निरंतर सेवा निरंतर शब्द को क्या करो
अंडरलाइन
करो
वरदान के रूप में ले जाओ वरदान के रूप में
वरदान के रूप में डबल अंडरलाइन करो निरंतर कभी कभी शब्द बाबा को पसंद नहीं कभी कभी याद करने वाले पूरा भाग्य नहीं ले सकते आधा भाग्य लेंगे और आधा भाग्य लेने वाले सूर्य वंश में नहीं आ सकते चंद्र वंश में आएंगे तो पूर्ण भाग्य लेना है सूर्य वंश में आना है तो निरंतर सदा याद बाबा ने आज भाग्य के लिए कहा बाप दादा क्या देख रहे हैं भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं भाग्य की रेखाओं को देखकर खुश हो रहे हैं हर्षित हो रहे हैं तो ब्राह्मणों की जन्म पत्री आज बाबा ने कही जन्म पत्री में क्या क्या देखा जाता है तिथि, जन्म की तिथि, जन्म की तारीख, राशि, समय, समय या वेला, ग्रह या फिर दशा, ग्रहों की दशा या ग्रह, कुल, धर्म, संपत्ति, संबंध, पोजीशन, ऑक्यूपेशन, इतनी सारी बातें।
ग्रह
तो सबसे पहले तिथि और तारीख एक साथ है, तिथि तारीख और समय एक साथ ले लो। तिथि तारीख कौन सी? जो बाप के अवतरण का समय, वही हमारे जन्म का समय है। तिथि और तारीख एक ही है,
एक ही बात है।
तिथि और तारीख एक ही है,
दिनांक बोल दो उसमें।
दिनांक, तिथि, तारीख
एक ही बात है।
जैसे श्री राम का जन्म दिखाते हैं ना, अभी रामनवमी हुई ना, कल बस हुई है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्यकाल अतिशीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये राम की तिथि दिखाया है, अभिजित नक्षत्र है, शुक्ल पक्ष है, हरिप्रीता जो हरि को प्रिय है, पावन काल अतिशीत नघामा, बीज मध्यकाल अतिशीत नघामा, वहां पर लोक विश्रामा, पावन काल है, इस समय श्री राम का जन्म दिखाया है। तो महान आत्माओं की जन्म पत्री इस तरह की होती है। राम का सुबह दोपहर को, श्री कृष्ण का रात में 12 बजे। तो हमारी तिथि तारीख कौन सी है? जो बाप के अवतरण की तारीख है, तिथि है, वही हमारी है। एक दूसरा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। राशि कौन सी है? विश्व कल्याणकारी की राशि, इसमें सर्वगुण समाये हुए हैं, बाप के सर्वगुण। कुल कौन सा है?
कुल ईश्वरी,
डायरेक्ट ईश्वरीय कुल। धर्म कौन सा है?
ब्राह्मण चोटी,
ब्राह्मण चोटी। संपत्ति
अखूट और
अविनाशी। पोजीशन कौन सी है?
मास्टर
सर्वशक्तिमान। रेखा कौन सी है?
त्रिकालदर्शी
और विशाल, बुद्धि की रेखा, बुद्धि की लाइन, बुद्धि की लाइन और कर्म की रेखा, निरंतर योगी,
कर्म योगी,
सहज योगी, तो रेखाएं भी आती है उसमें।
भाग्य,
और भाग्य में क्या?
तख्त,
ताज, भाग्य के सितारे में ताज और तख्त को देख रहे हैं। तो ये सारी बातें किस, कौन सी चीजें है ये सब? जन्म पत्र में
दो तो बड़े बड़े सामान ही आ गए इसमें।
हाँ, बड़े बड़े सामान आते। बाबा ने एक चीज के बारे में नहीं कहा, संबंध ऊपर मेंशन किया, नीचे कुछ बोला नहीं उसके बारे में।
संबंध ना,
संबंध, संबंध भी है। 8 और टोटल 10 बातें हैं। पोजीशन नीचे बोला, ऊपर ऑक्यूपेशन बोला।
आगे से एक पैराग्राफ में दिया ना कि भगवान अपना बर्तन को छोड़कर तुम बच्चों से मिलने
टोली खिलाते
हैं मैसूर पे,
कभी सोचा है? वो भी तो इसी
का, वो इसी का भाग्य ही है। ऐसा भाग्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान से मिलेंगे, भगवान से टोली खाएंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, ये कभी स्वप्न में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। तो भगवान अपना वतन छोड़कर
कितने भाग्य
तुमसे मिलने आता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, तब तो मिलने आता है। नहीं तो अपना वतन छोड़कर वो क्यों आएगा मिलने? तो अपना वतन छोड़कर तुम बच्चों से मिलने आता है, तो तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। और फिर ये भाग्य जब यहाँ है, तो फिर वो थकावट, वो तकलीफ है, वो कष्ट, वो महसूस नहीं हो।
अभी जो बाबा ने ये बोला कि जो ब्रह्मा का जन्म अवतरण या बाप का अवतरण वो तुम ब्राह्मणों का, अभी मान लो जो अभी ब्राह्मण बना ही नहीं है, वो कहीं है, लेकिन उसकी भी वही डेट है, वही समय है, तो उसको कैसे कनेक्ट करें?
मैंने
ध्यान तो होगा ना उसका,
इमर्ज कर लिया, आए आगे या पीछे,
इमर्ज कर लिया,
एक साथ उसको इमर्ज कर लिया।
देखो भगवान जिस दिन इस धरा पर आया,
देख लेता है ना,
उसी दिन उसकी दृष्टि उन सब पर पड़ गई जो कि उसके उसके जो बच्चे थे या जो सत्युक्ता वाले थे या जिसे उसे ब्राह्मण बनाना था। तो सबसे पहले वो ब्रह्मा तन में आए। अभी ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा कौन किसको कहेंगे? ब्रह्मा वो व्यक्ति है दादा लेखराज और जिसमें शिव बाबा है, वो जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ये दो, इसको ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा अगर इसमें शिव बाबा नहीं है तो वो ब्रह्मा नहीं है, वो दादा लेखराज है। तो ब्रह्मा का अर्थ ही कौन है कि वो शरीर लेखराज का और उसमें शिव बाबा की आत्मा, ये जो है इसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा का जन्म जैसे ही हुआ तो ब्रह्मा के जन्म के साथ ही सारी सृष्टि का जन्म ब्रह्मा की संकल्प से है, तो वहीं पर उसको संकल्प आ गया और मानसिक पुत्र है सारे एक रीति से। मुख वंशावली जिसको कहते उसको वहां पर भी शास्त्र में दिखाया ब्रह्मा के मनु शत्रुपा और वो जो जो है ना वो सब मानस पुत्र है ब्रह्मा के, जो भी उत्तर दिखाए हुए हैं सप्त ऋषि वो सारे जो भी है वो मन से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा का जन्म होते ही दादा लेखराज नहीं, ब्रह्मा का जन्म होते ही सारे ब्राह्मणों का जन्म हो गया। तो शिव का जन्मदिन और ब्रह्मा का जन्मदिन और सारे ब्राह्मणों का जन्मदिन, चाहे वो उस समय आए या ना आए, उनका सबका जन्म की तारीख एक ही, एक रीति से अलौकिक रीति से। हाँ वो अभी भी कुछ कुछ नहीं आए हैं, पर वो जब भी आएंगे उनकी जन्म की तारीख वही है जो हर ब्राह्मण की है। तो हर ब्राह्मणों की जन्म तारीख एक ही है, समय एक ही है, ब्रह्म मुहूर्त संगम।
जिस दिन बाबा ने आया है उन बच्चों को विमर्श करके एडॉप्ट कर लिया
तुरंत, वो उसमें आते ही उसकी दृष्टि से ही संकल्प, ब्रह्मा की संकल्प से सृष्टि है, उसकी दृष्टि से ही सृष्टि की रचना हुई है। तो उसने वहीं से, क्योंकि वो कहते हैं ना बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चला रहे थे, तो वो बाबा ऐसे बात करते थे जैसे पता नहीं हॉल में 10 लोग हैं, पर वो बात ऐसे करते थे जैसे पता नहीं वो पीछे देखते थे जैसे। तो लोग पूछते थे बाबा, बहने पूछते थे कि बाबा आप यहाँ तो 10 ही लोग हैं, बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चला रहा हूँ, अभी तो कई हजारों लाखों आने वाले हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। वो तो मतलब उनको लग रहा है ना कि ये क्या बात कर रहे हैं, जैसे अभी इधर इतने लोग बैठे पर बात ऐसे कर रहे हैं पता नहीं जैसे कोई 20,000 की सभा है। वही वो उसमें से कुछ सो रहे हैं, क्योंकि बाबा तो रात भर जाग रहे हैं, उसमें से कई लोग जाके खाना पीना खा के फिर सुबह सो के 4 बजे आते थे, फिर 4 बजे बाबा है ही बैठा हुआ है, चल रहा है उसका कुछ, कभी कभी बीच में बाबा खाली है। एक बार नहीं कि हिस्ट्री हॉल में माताएं चली गई, नहीं भाई लोग चले गए, भाइयों को लगा माताओं से बाबा मिल रहे, माताएं भी मिलके चली गई, बाबा कह रहे कि अकेला बैठा है। कितना देर ऐसे ही बैठे थे। तो वो एक समय था, और अभी कि दूर से देख ले, देख भी लिए तो बहुत, एक समय ऐसा भी आएगा कि बस टीवी पे देख लेंगे, ये है बस, यहाँ पहुंच भी नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ हो जाएगी। तो ब्राह्मणों का जन्म, ब्रह्मा का जन्म, शिव बाबा का जन्म और ब्राह्मणों का जन्म एक ही दिन है। तो समय तिथि तारीख हो गया, समय हो गया और राशि हो गई विश्व कल्याणकारी, जिसमें बाप के सारे गुण समाये हुए हैं, राशि हो गई। उसके बाद में संपत्ति कौन सी, अकुट अखंड खजाने जो मिले, अविनाशी खजाने जो मिले वो सारी ये संपत्ति है। पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान, ऑक्यूपेशन के बारे में बोला नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं तो विश्व कल्याणकारी भी हो सकता है, राशि और ऑक्यूपेशन एक साथ मिला, या फिर आगे बाबा ने कहा कि तुम्हारा विश्व कल्याण कर्तव्य है विदेशियों से का ऑक्यूपेशन। उसके बाद में रेखा भी हो गया, रेखा कौन सी, रेखा कोई इंग्लिश में लाइन कहते हैं ना, तो बुद्धि की लाइन आ गया वहां पर, विशाल और त्रिकालदर्शी, या फिर कर्मों की रेखा, ये ज्यादा उपयुक्त है, कर्मों की रेखा, निरंतर योगी सहज योगी योग से जोड़ा हुआ। तो रेखा कुल, कुल कौन सा,
ब्राह्मण,
ब्राह्मण
नहीं डायरेक्ट,
डायरेक्ट ईश्वरीय कुल के सर्वश्रेष्ठ, डायरेक्ट ईश्वरीय कुल के है, और धर्म ब्राह्मण, सभी कहते हैं बाबा ब्राह्मण धर्म नहीं है,
चूटी
कभी कभी साकार मूल्य में आता है ना, ब्राह्मण धर्म नहीं, कभी कहते मैं 3 धर्मों की स्थापना करने आया हूँ, कभी कहते हैं कि बाबा इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, फिर कहते मैं 3 डायनेस्टी स्थापना करने आया, कभी कहते सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, कभी कहते कि हाँ उनकी डायनेस्टी है, तो डायनेस्टी भी है, धर्म भी है, कुल भी है, परिवार भी है। और ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि परिवार ये कुल, इसको कुल कहेंगे, ये डायनेस्टी नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये कुल है, ईश्वरीय कुल, वो दैवी कुल,
राजा ही नहीं है,
राजा स्थापन के लिए भी कहते हैं या राजा यहाँ नहीं हो सकते। पर बाबा ने कहा, पर ये भी कहा है कुल, इसको डायनेस्टी भी नहीं कह सकते, इसको धर्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये धर्म नहीं है। ऐसा भी कहा है, अलग अलग
परिवार
है, कुल है,
कुटुंब है, यहाँ पे बाप भी है, बच्चे भी है, माँ भी है, सब इसलिए परिवार है,
ईश्वरीय परिवार, प्रभु परिवार,
माँ बाप और बच्चे। लेकिन सबसे ज्यादा जो संबंध रहता है हमारा बाबा के साथ, मना 24 आवर्स बहुत ज्यादा जो ख्याल में रहता है, वो बाप टीचर सदगुरु के रूप में ही ज्यादा मैं देखता हूँ।
देखो अभी किसने सदगुरु के रूप में, कितने लोग याद करते हैं बाबा को?
बहुत कम।
जिसने भक्ति काल में गुरु किया होगा, जिसने गुरु किया ही नहीं, जिसको गुरु की कोई अनुभूति नहीं, अभी कई है जो बचपन से ज्ञान में है, उनको गुरु का बहुत कम अनुभव है, उनको ज्यादा अनुभव बाप का है, माँ का है, ठीक है, माँ बाप का है, शिक्षक का अनुभव हो सकता है, परंतु गुरु का अनुभव भक्ति काल में गुरु जो लोग करते हैं, गृहस्थी लोग ज्यादा करते हैं, कुमार तो कम ही करते हैं। कुमार समझते हम ही गुरु है दुनिया के, हम गुरु वो कौन गुरु करेंगे, गुरु कम करने वाले कुमार बहुत कम है। गुरु गृहस्थी लोग ज्यादा करते हैं, कुछ कुछ करते हैं कुमार भी, तो जिन्होंने गुरु किया है उनको अनुभूति होती है गुरु की।
आजकल जो समय आना है सब पड़ेगा,
आजकल के समय में वो कॉलेज के स्टूडेंट्स वो गुरु करते हैं क्या? उनको टाइम ही नहीं है सिनेमा और पार्टी से। तो उनको तो समय नहीं है,
तो गुरु कर लेंगे गुरु याद कर।
हाँ, वो गुरु करने के लिए तो गुरु बहुत तीव्र भक्ति की जरूरत है, जिसमें परमात्मा प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो जाए आत्मा में, तभी वो गुरु की तलाश में, क्योंकि फिर खोज करते करते पता चलता है कि ये खोज गुरु के बिना अपूर्ण है, तब कहीं जाकर वो गुरु की खोज करता है, या फिर गुरु को ढूंढता है, या फिर गुरु उसको ढूंढ लेता है, दोनों चीजें। तो गुरु का अनुभव बाबा से ये अलग विषय है, क्योंकि गुरु वरदान देता है, गुरु समस्याओं का हल करता है। राजाओं को जब भी कोई समस्या आती है तो गुरु के पास जाते थे कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो गुरु उसके उसका निवारण करते।
युद्ध के समय में भी
ना कई अलग अलग
कुश्ती
जो भी समस्या है, विपदा है, संकट है, आपातकालीन स्थिति है, उसमें गुरु की सहायता ली जाती है, गुरु मार्गदर्शन करता है, गुरु सब कुछ बताता है, ये करना चाहिए वो करना। पर भगवान को गुरु के रूप में मानना, वो भी सतगुरु, सिख लोग मान सकते हैं जल्दी, क्योंकि लोगों तो गुरु को मानते हैं ना,
उनकी कितने सारे गीत जो है ना बाबा से मिलते
हैं, गुरु से ही ज्यादा कनेक्ट है।
इसलिए साकार मूल्यों में सिखों के लिटरेचर का बहुत
गुरु गोविंद 10 जो भी गुरु है, पहले गुरु बाद में नाम, पहले गुरु स्टार्टिंग में
वाहे गुरु, तो उनके इसमें है ना, तो वो लोग थोड़ा जल्दी मान सकते है। तो सर्व संबंध ये भी एक भाग्य है, संबंध का भाग्य। इस संबंध के भाग में कॉन्टेक्ट भी आ सकते हैं, माना संसार में अगर देखा जाए तो किसका किसको भाग्यशाली माना जाएगा? इसमें तो जन्म की बातें छोड़ दो, ऐसा चलो किसी का उच्च कुल में जन्म है, अच्छे धर्म में है, या फिर उसके संबंध कैसे है, कितने लोगों को वो जानता है, उसमें भी भाग्य बताया जाता है ना, या कितना धनवान है, संपत्ति क्या है उसकी, राशि, और वो सब कम देखते है। जन्म की बातें छोड़ो, पर जब बड़ा होता है तो पोजिशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, संपत्ति कितनी है, ये बातें ज्यादा देखी जाती है। हाँ, मतलब ऊपर से जो दिखाई देती है ना, जन्म का तो बहुत कम पूछेंगे लोग, परंतु संपत्ति, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, ये सब चीजें भाग्य को दर्शाती है कि भाई कोई बहुत बड़ा तकदीरवान है या धनवान व्यक्ति है, तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका पोजीशन क्या है, मान
सकते।
हाँ, वो इसके लिए कहा ना बाबा ने, इसमें भाग्य में दोनों चीजें जोड़ी है, तो जन्म की बातें जोड़ी है जो कि कुल राशि, तिथि, तारीख और ये सब, और सब, और बड़े होने के बाद में ये दूसरे प्रकार की बात है। तो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम है, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था ये सारा भाग्य हमको मिलेगा, तो इसका निरंतर अध्ययन करते रहना, चिंतन करते रहना। फिर क्या कहा?
फिर तो बातें हैं,
इतना भाग्य विधाता के बच्चे बन गए, मास्टर भाग्य विधाता बन गए, उसके बाद में भी कुछ करते हैं,
बीच में
गुड़ियों का खेल करते हो। अलग अलग प्रकार की गुड़िया बताई बाबा ने, कई असंख्य प्रकार की गुड़िया है, 5 अद बताई। भक्ति मार्ग में देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, उनका क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पहले सबसे पहले मूर्ति का निर्माण, मूर्ति का जन्म या मूर्ति को बनाना, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड प्राण प्रतिष्ठा,
सजाते हैं ना,
प्राण प्रतिष्ठा पहले की जाती है मूर्ति की।
सजाते बाद में,
सजाते हैं, चलो सजाने का ले लो
पहले, सजाया
ओके सजाने का पहले ले लो, और भगवान ने आज पहले प्राण भरने को कहा, प्राण
पहले बिठाएंगे फिर सजाएंगे,
कोई भी ले लो, पर बाबा ने ऐसे कहा तो प्राण प्रतिष्ठा या सजाना, फिर भोग लगाना, फिर भोग वितरण, भोग लगाना, खाना खुद और वितरण, और अंततः विसर्जन, मूर्ति विसर्जन। मूर्ति विसर्जन आज प्रदूषण की दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्या है मूर्ति विसर्जन, क्योंकि कितनी नदियां प्रदूषित हो रही है मूर्ति विसर्जन के कारण।
तालाब
नदियां, गंगा जमुना पर तो रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट में कि नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी हानि होती है, उसमें जो रंग होते हैं मूर्तियों को लगे हुए रंग, मूर्तियों की वो साथ में, मूर्ति अकेली नहीं होती ना विसर्जन करते समय, उसके साथ में फूल और पत्ते और बहुत सारी पूजा की सामग्री को भी विसर्जित किया जाता है, कचरा तो बहुत सारा होता है। और दूसरी बहुत एक समस्या है ट्रैफिक, मुंबई में गणेश विसर्जन के समय ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, कहीं कहीं नहीं जा सकते, वो विसर्जन का दिन सुबह से लेकर रात तक सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर पेशेंट्स को आती है हॉस्पिटल के। अगर एक हॉस्पिटल जैसे दादी जी थे तो वो उनको दूसरे हॉस्पिटल हमको शिफ्ट करना था, पर नहीं कर पाए क्योंकि पूरा ब्लॉक था, विसर्जन हो रहा था ना उस दिन, विसर्जन का दिन था वो, तो वो ट्रैफिक जैम, पेशेंट शिफ्ट नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, डॉक्टर हॉस्पिटल में आते नहीं होते, बहुत इम्पोर्टेंट ये बहुत, क्योंकि नहीं जाते ना, बाकी लोग तो चले जाएंगे स्टाफ और वो, पर डॉक्टर नहीं आते क्योंकि कितना ट्रैफिक क्रॉस करके पहुंचना, वो दूर दूर रहने वाले नहीं जा सकते, फुल मुंबई ब्लॉक हो जाता है, फुल ब्लॉक, जा ही नहीं सकते। तो ये
तो सबसे पहले पेशेंट आ जाए तो?
कुछ नहीं कर, वो जो है लोग मैनेज करते हैं, जूनियर डॉक्टर जो कंसल्टेंट है बने, तो सबसे पहले भाग्य विधाता के बच्चे बन गए, परंतु अभी भी गुड़ियों का खेल कहते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में क्या कहते थे गुड़ियों के खेल के लिए, या पूजो टाइम वेस्ट ऑफ मनी एनर्जी सब कुछ, तो यहाँ पर भी गुड़ियों का निर्माण करते हैं बच्चे। कौन सी गुड़िया, बात, कैसी बात, निर्जीव बात, कैसी बात, असार बात, कैसी बात, छोटी छोटी बात, कैसी बात जो रियल नहीं है, वो बात जो रियल नहीं है उसको रियल बनाते, जो छोटी है उसको बड़ी बनाते, जो निर्जीव है उसको सजीव बनाते, जो असार है उसको सार युक्त बनाते, ऐसे कुछ गुड़ियों का निर्माण करते हैं, पांच गुड़ियों का निर्माण करते हैं बच्चे आज की गुड़िया। मैं तो असंख्य गुड़िया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो भी गुड़िया ही है, ये भी गुड़िया ही है। तो सबसे पहली गुड़िया कौन सी कहा, पहले हम एक एक गुड़िया बाद में देखेंगे, पहले ये पांच गुड़ियों का निर्माण करते हैं, और सबसे पहले क्या करते फिर उनका निर्माण या जन्म देते हैं,
फिर उसमें जान डालते,
फिर उसमें प्राण भरते हैं, कैसे प्राण भरते हैं, यही सत्य है, यही ठीक है, अनुभव करते हैं और कराते हैं, ये अलौकिक भाषा है ब्राह्मणों की, ये ब्राह्मणों की भाषा जो है ना, ये क्या मतलब, दूसरों को अनुभव कराना कि हम सत्य है, या ये सत्य है, बाबा कहते हैं ना अनुभव करो और कराओ, सुनो और सुनाओ नहीं, केवल सुनो और सुनाओ नहीं, अनुभव करो और कराओ, तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे बच्चे, कहाँ पर, ये सत्य है, ये ठीक है, ये बात सत्य है, ये बात ठीक है, इसका अनुभव करना और कराना, सुनना और सुनाना। तो ये क्या है, वो मूर्ति है जो निर्जीव है उसमें सजीव कर रहे, उसमें प्राण भर रहे, असार है उसमें सार युक्त बना रहे, उसको छोटी है बात उसको बड़ी बना रहे,
दूध पिला देते हैं
तो ये छोटी बात को बड़ी बना रहे हैं, जो रियल नहीं है उसको रियल बना रहे हैं, मतलब यहां से शुरुआत हुई है। ये पांच मूर्तियां, पांच मूर्तियों में, पांचों मूर्ति का एक एक मूर्ति का बाद में लेंगे हम, पहले पांच मूर्तियों में सबसे प्राण भरा, अभी प्राण भरने के बाद क्या किया, फिर सजाते हैं उसको, कैसे सजाते हैं, सजाते कैसे, आगे पीछे की स्मृतियों से, आगे पीछे की स्मृतियों से उस मूर्ति को सजाता है, सजा दिया, अभी सजाना हो गया, उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या करते हैं बच्चे? भोग लगाते हैं। कौन सा भोग लगाते हैं? उल्टे ज्ञान की उल्टे पॉइंट सुना सोचकर, ज्ञान की पॉइंट से उसको उल्टे रीति से सोचकर, और उसमें भी पहले कच्चा
फिर पक्का,
पहले भोग लगाते हैं उसको, और वो भी कैसे? रोज रोज लगाकर पहले कच्चे को फिर और मजबूत और पक्का बनाते हैं, मजबूत एंड पक्का दो, ऐसा भोग लगाते हैं। और भोग लगा के केवल खुद नहीं खाते, ब्राह्मण इतने स्वार्थी नहीं है कि खुद खाए, बंडे परिवार के सदस्य कुटुंब सबकी बुद्धि को स्वीकार कराते हैं ये भोग। इसे भोग वितरण कहा जाता है भक्ति में, महाप्रसाद इसे प्रसाद नहीं महाप्रसाद कहा जाता है भक्ति में। फिर वो तो खिला दिया, और उसके बाद क्या करते हैं? फिर फिर डुबोते हैं, फिर विसर्जन करते हैं, और वो भी लहरों में विसर्जन, पांच लहरें हैं, पांच मूर्तियां हैं। अरे रहने दो ना, अंदर का अच्छा लगता है,
वही अच्छा लगता
है, मध्यम प्रकार
हो गया।
तो कौन सी अभी ये सब तो कर लिया, चार चीजें कर ली, मूर्ति को बनाया, मूर्ति का निर्माण किया, मूर्ति को जन्म दिया, मूर्ति को सजाया, मूर्ति को भोग लगाया और खिलाया दूसरों को, भोग वितरण किया, फिर समझ में आया कुछ और कि ये तो सत्य नहीं है। तो फिर वहां पर अभी उसको डुबोने की प्रयत्न, कौन सी लहरें हैं? बीती तो बीती, बाबा को बता रहे भाई ठीक है अभी हो गया तो क्या, भूलो जो कुछ गलती कर लिया, अभी लहरों में डुबो दिया उस मूर्ति को, अभी नहीं होगा आगे से। एक स्वउन्नति की लहर, आज से स्वउन्नति करेंगे, अभी तो ये हो गया, या फिर आज से हाई जंप, फिर पुरुषार्थ करेंगे, फिर स्मृति स्वरूप होंगे, या फिर ज्ञान सागर मास्टर नॉलेजफुल बनेंगे, ये सब किया। तो मूर्ति स्थापना सजाना, प्राण प्रतिष्ठा सजाना, भोग लगाना और दूसरों को खिलाना, भोग वितरण महाप्रसाद का वितरण किया, और उसके बाद में पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर थोड़ी ज्ञान की बातें याद आ गई, फिर थोड़ी क्लासेस सुन ली, तो स्वउन्नति की पॉइंट, हाइजन की पॉइंट, और बीती से बीती की पॉइंट, या फिर मास्टर नॉलेजफुल की पॉइंट, तो गया उसमें इन लहरों में। जरूरी नहीं है कि सब डुबोएंगे, ये डुबोनों की जो प्रोसेस है वहाँ 7 दिन में डुबो देते, पर यहाँ 7 साल भी लग सकते हैं, और किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये गुड़िया भी हमने निर्माण की है, और इसको डुबाना भी पड़ता है, शायद सारी उम्र भी चली जाए और डूबे ना, जरूरी नहीं है ये डूबेगी, संभाल के रखते है कई। और वो मूर्ति जो है ना उसको रोज भोग खिला रहे, तो वो तो और शक्तिशाली होती है, उसमें प्राण भरते हैं रोज, उसको और पक्का करते हैं। तो मूर्ति तो पहले निर्जीव थी तो ठीक है, फिर बाद में मूर्ति उसको कंट्रोल करने लगती है फिर वो धीरे धीरे उस मूर्ति के वश में हो जाता है,
निर्जीव हो जाते हैं।
वो निर्जीव थी तो अभी सजीव हो गई,
ये निर्जीव हो जाता
है, अभी ये निर्जीव हो जाता है, वो सजीव हो जाता है, वो उसको डुबाने का सोच रहे, अभी वो मूर्ति इसको डुबा दिया है। सबसे पहली मूर्ति है ईर्ष्या की मूर्ति, बोलो ईर्ष्या ब्राह्मणों में कब कब आती है? ईर्ष्या की मूर्ति को निर्माण करते रहते, ये चार पांच स्टेप में जाएंगे। सबसे पहले स्टेप है ईर्ष्या, अभी सबसे पहले क्या करेंगे? उसका निर्माण, उसको जन्म देंगे। तो ईर्ष्या आ गई, क्यों आई?
कंपैरिजन से भी आती,
कंपैरिजन कोई जिसको किसी को सफलता प्राप्त हो रही है तो ईर्ष्या, कोई आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या, किसी को मान सम्मान ज्यादा मिल रहा है तो ईर्ष्या, और साधन किसी को ज्यादा मिल रहे तो ईर्ष्या। कोई अभी अभी आया, हम इधर 20 साल से और ये अभी अभी आके आगे बढ़ रहे हैं, हमारे नाक के नीचे अंडर द नोज, आंखों के सामने आगे कैसे बढ़ रहा है, हम यहाँ कब से बैठे हैं, किसी को प्यार सम्मान ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो ईर्ष्या, बड़ी सूक्ष्म है ईर्ष्या। किसी को नाम सम्मान कैसे ज्यादा मिल रहा है, किसको ज्यादा पूछ रहे हैं, हम यहाँ आज तक किसी ने पूछा नहीं, हम बीमार है कोई पूछते नहीं आए, और ये देखो बीमार पड़ गया तो पता नहीं,
भीड़ लगी रहती है
तो तार लगा रहता है लोगों का, तो ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म बातें, सुविधाएं, साधन, सेल्वेशन, इसको मिल रहे हमको नहीं मिल रही, ये सर प्यार, किसी को ज्यादा प्यार हमको कम, कोई कुछ करता नहीं है फिर भी उसको सब मिलता है, सेवा कुछ नहीं और नाम बहुत हो रहे हैं, हम दिन रात सेवा करते हैं नाम ही नहीं हो रहा है, कोई पूछता नहीं, पूछने को कोई है नहीं, ये देखो आगे आगे करते तो इनका नाम होता है, हम पीछे रहते तो हमारा नाम नहीं होता, तो उनसे भी ईर्ष्या होती
है,
ईर्ष्या इज जेलसी, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या अलग प्रकार की चीज है, मराठी में एक शब्द है हेवा, हेवा थोड़ा पॉजिटिव है, ईर्ष्या का ही पॉजिटिव रूप है, जिसको कहा जाता है कि मुझे ये लगता है कि भाई तुम में ये है तो मुझ में नहीं है वो चीज, पर फिर भी पॉजिटिव है वो वर्ड, ईर्ष्या एकदम निगेटिव कैटेगरी में जाता है, ईर्ष्या में जलन है, जलन है वो ईर्ष्या, जलसी जो है ना, ईर्ष्या में आदमी जलता है, और कभी कभी किसी को मतलब किसी ने अभी बाप उसका बेटा है उससे आगे चला गया, बाप की सैलरी 20,000, बेटे की सैलरी अभी 24 साल का 1,00,000, तो बाप को जेलसी नहीं होती है, उसको प्राउड फील होता है, हेवा वर्ड तो मुझे वो थोड़ा अच्छा लगता है उसको उसका, तो वो भी वो ईर्ष्या नहीं है, वो एक पॉजिटिव फॉर्म है उसका, कि कोई भाई हमसे आगे, गुरु शिष्य अगर गुरु से आगे जाए तो शिष्य गुरु को बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ही फील्स प्राउड कि ऐसा है,
लेकिन आजकल तो उसमें जेलस होते
फिर भी इन जनरल जो सच्चे गुरु होंगे ना, सच्चे गुरु होंगे जो अभी तक के, हाँ हमेशा गुरु को, जैसे कोई टीचर है, टीचर ही रहता है, पर उसका जो स्टूडेंट है वो बड़ा डॉक्टर बन जाता है या कोई कुछ बन जाता है, उनको अच्छा लगता है ना, अभी उसका तो उनकी ना तो सैलरी इतनी ज्यादा है जितनी डॉक्टर की होगी या कुछ होगा, या इंजीनियर बन गया, IAS ऑफिसर बन गया, वो तो टीचर ही रहे ना, परंतु उनको खुशी तो होती है, तो वहाँ ईर्ष्या नहीं है, हाँ प्राउड फील, वो ईर्ष्या नहीं है, वो एक अलग रूप है उसका, अभी ये जो बाबा कह रहे एकदम निगेटिव वाली चीज है, कि जिसमें कोई आगे जा रहा है हमको उससे जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि वो आगे क्यों जा रहा है, आगे नहीं जाना चाहिए उसको, हम कुछ करते नहीं परंतु ऐसा लगता है कि वो थोड़ा पीछे हटे उनको थोड़ा सा उसका नाम जो लाइन लाइट में है ना वो थोड़ा कम हो जाए कोई दूसरी बातें आ जाए यहाँ पर और उसका नाम थोड़ा सा कम हो जाए, ऐसी हमारे अंदर से
इसके लिए सूरज भाई एक बार बहुत अच्छी बात बताई
कि ईर्ष्या अगर हम किसी के सक्सेस से ईर्ष्या करते हैं तो वो सक्सेस हमारे
दुख नहीं आएगी,
सफलता अगर कोई हो रहा है सफलता प्राप्त हो रही है तो उन्होंने कहा था कि वो सफलता हम उस सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं तो सफलता हमारे तक नहीं आएगी, इसके लिए हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हमको क्या पता किसमें क्या क्या महानताएं छुपी हुई है, तो सबसे पहले ये ईर्ष्या को निर्माण किया, अभी इसमें प्राण भरते, प्राण भरना अर्थात ये सत्य है ये ठीक है इसको सुनना सुनाना अनुभव करना कराना, दूसरों को भी बताएंगे
जरूरी है,
अपना ईर्ष्या का बोझ थोड़ा हल्का करने के लिए कि ये ऐसा ही है यही सत्य है, हम जो सोच रहे इस आत्मा के बारे में ये सत्य है, और उसको दूसरों को सुनाएंगे, सुनना सुनाना ये हो गया, उसमें प्राण भर गया, अभी वो जो बात वो संकल्प जो बात जो मूर्ति अंदर निर्माण की है उसमें प्राण भरे, तीसरी स्टेप है उसको भोग लगाएंगे, ज्ञान की उल्टी बातें, उसमें बाबा ने कहा ज्ञान की उल्टी बातें के भी चार उदाहरण दिए है, जैसे ये तो होता ही है, हम तो पुरुषार्थी है कोई बना नहीं है, अंत में कर्मातीत बन जाएंगे, ये अलग रीति चार बातें बताई है, जो कि इसको कहा जाता है क्या भोग लगाना, ज्ञान को उल्टे रीति से लेना, मतलब बाबा की भी कोई बात इधर उधर से निकाल लेंगे कि ये ईर्ष्या कोई हम में थोड़ी ना है, ऊपर देखो उनमें भी है ये सब भी बोलेंगे, बड़ों में भी है दादियों में भी है ये सब भी बोल सकते हैं, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सिद्ध और सिद्ध जब आ गया तो किसी का भी उदाहरण दे सकता है, तो ये हो गया भोग लगाना, अभी भोग लगाया पर दूसरों को साथ में खिलाना भी है, क्योंकि ब्राह्मण महादानी है ना, तो दूसरों को भी बताएंगे ये बातें जो अंदर निर्माण हुई है ईर्ष्या की, वो दूसरों को भी बताएंगे, और फिर बाद में पता चलेगा ऐसा कुछ है नहीं, या फिर ये हमारी स्थिति डाउन हो गई, तो फिर स्वउन्नति की लहरें और बीती सो बीती और हाई जंप की लहरें और मास्टर नॉलेजफुल की लहरें, उन लहरों में जाएंगे। ईर्ष्या फिर है, वहम और अनुमान दोनों लगभग, वहम थोड़ा लोअर लेवल, अनुमान थोड़ा लोअर लेवल का है, उसी की हायर लेवल पर वहम है।
अभी इसका वैसे प्रैक्टिकल उदाहरण, पहले अफवाह ना चार बारी बाबा आएंगे, अब लिस्ट आ गई तो आठ बार की आप लिए घूम रहे, आप तो चार बार की घूम रहे। अरे लिस्ट से क्या होता है, आएंगे तब देख लेना।
पहले एक है अनुमान, हम पहले अनुमान को लेंगे। अभी अनुमान अर्थात क्या, अनुमान अर्थात गेस, गेस करना या फिर अजम्पशन करना कि भाई ये ऐसी चीज है। उसमें एक होता है दर्शन में अनुमान का बड़ा महत्व है, अजम्पशन, एक होता है प्रमाण, एक होता है अनुमान। एक होती है प्रमाण है, एविडेंस है जिसका, और एक होता है अनुमान लगाना। अनुमान को भी बहुत निगेटिव रूप से लिया जा सकता है, अनुमान अलग है, अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट प्रमाण और अनुमान दो चीजें। एक है जहाँ प्रमाण है कि ये चीजें हैं, दर्शन में ही आता है, छह दर्शन जो है भारतीय दर्शन, कुछ में कुछ चीजें प्रमाणित है, कुछ चीज अनुमानित है, अनुमति ऐसे कुछ शब्द है वहां पर। तो ये अनुमान जो है वो क्या है, अज्यूम करना, सोचना ये ऐसा है, पता नहीं कुछ, पर इधर उधर की बातें, यहाँ यहाँ वहां 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 से निकले, कोई दिखा भाई और बहन कुछ तो है। सीधा एकदम ये वाली बात है,
कुछ तो है। बात करें अपन, देखा मेरे बारे में,
हाँ मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे क्या वो चुप हो गए,
हाँ।
तो क्या बात चल रही थी, शायद मेरे बारे में चल रहे हैं। अनुमान लगाया ना,
जगदीश क्या एक जगह बताया कि अनुमान माना 100% गलत,
हाँ वही अजम्पशन मतलब गेस करना गलत, पर अनुमान का शब्द का अर्थ ये होता है गेस करना, अज्यूम करना कि ये ऐसी बात है। हाँ एक है अनुमान, उसी का बड़ा रूप जो है वो है वहम। वहम अर्थात झूठा शक, अभी शक तो झूठा ही होता है पर वो ऐसी तरह से बोलते हैं, ऐसी धारणा जिसका कोई आधार नहीं है और जिससे हमको हानि हो सकती है, इसको स्वीकार कर लेना, ये होता है वहम। इसके मन में तो वहम बैठ गया है, जैसे कोई कोई पेशेंट होते हैं ना, ओसीडी नाम की एक बीमारी है जिसमें बार बार हाथ धोते रहता है पेशेंट, अभी धोया फिर वापस धोएगा, अभी लॉक लगाया बाहर गया वापस लॉक चेक करता है कि लगा कि नहीं लगा, फिर वापस चेक करता है। जैसे एक पेशेंट आया था, सुबह 9 बजे नहाने बैठती थी तो 5 बजे तक नहाना चालू, हाँ वही नहाते रहो। बूढ़े लोगों में होता है इस तरह के ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको वहम लग जाता है कि मैं साफ सफाई। दूसरा एक होता है वहम डेल्यूजन टाइप कि सबको साफ सफाई, कमरे को साफ करना है, अभी साफ किया थोड़ी देर का वापस साफ करेंगे, फिर वापस साफ करेंगे, साफ ही करते रहेंगे दिन भर, तो ये बीमारी का रूप भी धारण कर लेता है। अगर हाँ हाथ धुलाई हो गया, लॉक को देखना हो गया, बाथरूम नहाना हो गया, या फ्रिज देखना, फ्रिज खोलना वापस बंद करना बैठना, थोड़ी देर के बाद वापस देखना फ्रिज ठीक से लॉक तो किया है ना, फिर वापस बैठना, तो ये वहम बैठ जाता है अंदर, वहम बीमारी का रूप भी ले लेता है। एक है अनुमान, वहम, और वही फिर ऑब्सेशन हो जाता है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, ओसीडी। ओसीडी के बहुत सारे पेशेंट साइकेट्रिक में आते हैं, हमारे पास कम आते हैं, लेकिन सब देखते हैं इस तरह के पेशेंट। ओसीडी के बहुत सारे मरीज होते हैं, तो उनको फिर बीमारियों से बहुत सारी ट्रेनिंग देनी होती है। तो वहम में और क्या क्या चीज आएगी, वहम और या अनुमान, इसमें भी वापस वही स्टेप्स पे आ जाओ कि पहले निर्माण, फिर प्राण भरना, फिर भोग लगाना और डुबोने की प्रोसेस सब में कॉमन है, बाबा को बता देना। पर ये जो है अनुमान लगाना या फिर वहम, जैसे वो बीच में दादी गिर गए थे, वो हो सकता है 100% सत्य नहीं कहा जाता,
मर्डर बोला, मर्डर सॉरी।
वो दादी गिर गए थे, टाके लगे थे, अभी मैं अंदर खड़ा हूँ, वो टाके वो लगा रहे हैं, मुझे पता है, पूछ रहे दादी को 27 टाके लगे, अच्छा मैंने कहा मुझे पता नहीं कितने लगे, मैं तो अंदर ही था, कोई बोले 12 टाके लगे, कोई बोले 18 टाके लगे, कोई बोले तुमको क्या करना, अनुमान, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, पता किसी को कुछ नहीं,
वो कोई था ही नहीं उधर, और जिसने लगाए उसको भी नहीं पता कितने लगे, वो गिनते थोड़ी ना आए उस दिन राकेट लगाते अंदाज अनुमान। तो ये इस तरह से अनुमान करो, और वो तो वही तो बात है, करना क्या है तुमको, तुम्हारा लेना देना क्या है इससे,
कितना
क्या करना क्या है। हाँ तो वही ना, वही तो हो गया, मूर्ति निर्माण करना और उसको फिर भोग लगाना, ज्ञान की बातें लेके और फिर उसको फैलाना, यही सारी बातें होगी ना। वो
ऐसा कुछ नहीं
होता, वही जो व्यक्ति वहाँ रहता है उसको पता रहता है क्या है।
और फिर ब्राह्मणियों पे कमेंट, अरे कर, दो दो लोग करते क्या है।
अनुमान, अनुमान लगाना तुमको करना क्या है, कौन कहाँ योग में बैठता है, आज वो बहन आई नहीं यहाँ बैठती थी, कल वहाँ बैठती थी, क्या है, क्या बात है, अच्छा वो भाई ये डिपार्टमेंट में था, वो डिपार्टमेंट में चला गया, क्यों गया, क्या हुआ आखिर वहाँ पर, क्यों उसको वहां से, तुमको क्या करना है। जिसको जहाँ पहले ज्ञान सरो होता अभी शांति बन चला गया, क्यों, कुछ तो हुआ होगा, क्या था वो, अनुमान लगाते, अच्छा एक बार देखा था डिपार्टमेंट में झगड़ा चालू था, जरूर और बढ़ गया होगा, अरे तुमको क्या करना है, कौन कब आता है, कौन कहाँ योग में बैठता है, आज तुम आज बात कम कर रहे, जरूर कुछ हुआ होगा उधर, हमेशा तो अच्छे से बात करता है, हर्षित रहता है, आज की वजह से बात कर रहे हैं, अनुमान अनुमान लगा रहे, ब्राह्मण ये सब में बहुत होशियार है, उनको करना क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, किसने क्या किया, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, उनको लेना देना है कि, ये तभी होता है जब हृदय में रिक्तता हो, ज्ञान योग से व्यक्ति मुक्त हो, ये जो उत्सुकता है जिज्ञासा, ये बड़ी विकृत जिज्ञासा है, जिज्ञासा अगर करनी है तो ज्ञान की गहराई में जाने की, ज्ञान भावा ये जो कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है, किस आधार से कह रहा है, उन शब्दों और उन भावों की गहराई को जानने की जिज्ञासा, ना कि दूसरा क्या पुरुषार्थ कर रहा है, दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उसके मोबाइल में किसका SMS आ रहा है और किसके व्हाट्सएप आ रहा है और कौन सा ग्रुप है, तुमको क्या करना है और कितनी देर वो बात कर रहा है, तुमको करना क्या है, तुम अपने काम से काम रखो, बाप को देखो बस, और किसी को देखना ही नहीं है, ये तो फर्स्ट नियम है यहाँ का, अगर इस नियम का उल्लंघन किया तो माया खा लेगी, ये गुड़िया निर्माण, और फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, फिर उसको डुबो, उसमें टाइम दे, अनुमान और वहम, और उसके बाद में फिर रोग और आवेश, अभी ये रोग और आवेश भी, एक रोग थोड़ा नीचे है, रोग तो आंखों से भी होता है, आवेश क्रोध के अधिक नजदीक, रोग जैसे, रोग ऐसा है ना जैसे कोई इंचार्ज है तो आंखों से ही काम करता है तो सब समझ जाते हैं, चेहरा से उसमें बोलने की भी आवश्यकता नहीं, तो वहां पे रोग, परंतु वो जो रोग वाला व्यक्ति है जरूर उसने पूर्व में बहुत क्रोध और आवेश में आया हुआ होगा, बहुत डांटा होगा, उसके बाद में लोगों को समझ में आ गया, अभी उसको करने की जरूरत नहीं, अभी खाली आंखों से काम करता है, पर लोगों को पता है अगर ये किया नहीं तो वही उसके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा, इसके लिए पहले से डुबक के डरे हुए से रहते हैं, क्योंकि वो रोग है, वह थोड़ा लोअर फॉर्म है, आवेश, आवेश में उत्तेजना है, भावनात्मक उत्तेजना, भावनात्मक उत्तेजना बहुत क्रोध के अति नजदीक है, तो वहां पर भी फिर वही, उसकी मूर्ति निर्माण करो, उसमें प्राण भरो, वही सत्य है, क्रोध करने के बाद कोई ऐसा कहता है कि मैंने गलती की, कभी नहीं, अपने रीति से वो सिद्ध करता है कि कितना जरूरी था इन पर, ये इनके जरूरी है इनको ऐसा करना, नहीं तो ये सुधरेंगे कैसे, अगर मैं क्रोध नहीं करूं तो अगली बार भी यही गलती करेंगे, बहुत सारे हमारे पास तर्क वितर्क है इस बात के लिए, तो वो जो है वो प्राण भरते हैं, फिर भोग लगाते हैं, भोग लगाने में ज्ञान की पॉइंट देते, बाबा ने भी कहा है, बाबा भी ऐसा करता है, बाबा ने को भी जरूरत पड़ी थी ऐसे, मतलब बाबा के जीवन के भी कुछ प्रसंग उदाहरण लेके, या दादियों के या कहां कहां के बड़ों के भी जीवन के प्रसंग लेकर, अपने सुविधाजनक अपनी सुविधा अनुसार उसको प्रयोग में लाना। तो ये पांचों मूर्तियां पांचों गुड़िया, इसका खेल करने में क्या क्या गया, समय गया, संकल्प गए, संकल्प कर रहे ना, ऐसे बिना संकल्प के थोड़े ना होते, संकल्प करना पड़ता है कोई चीज किसी के बारे में, आवेश और क्रोध और रोध करने के बाद संकल्प,
संपत्ति,
टाइम, टाइम तो सबसे मुख्य, एनर्जी, फिर एनर्जी, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ये तो हो गया छोटे, पर उसके बाद में कुछ विकार के भी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी गुड़िया है, ईर्ष्या, द्वेष,
जो कर रहा है वो तो उसके ही गुड़िया, लेकिन जो उससे प्रभावित हो रहा है उसका भी तो बोझ अपने ऊपर भी जा
रहा है। हाँ, वो भी जा रहा है, वो विकर्म भी हो रहा है, और जिसमें ये जो मूर्ति को जो तैयार कर रहा है उसको पता नहीं चलता है कि ये मूर्ति में तैयार करके बिठा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा किए है उसकी, वो तो सोचते हैं मैं राइट ही हूँ, उसको पता ही नहीं है मूर्ति है, वो डुबाने वाले की प्रोसेस तो पुरुषार्थी जो है, तीव्र पुरुषार्थी वही करेंगे डुबोने का काम, बाकी तो जन्म भर भी मूर्तियां अंदर में सजी सजाई रहेगी मंदिर में, संभाल के रखी हुई है, वो डुबोने का संकल्प तो तब आएगा, सौ उन्नति की लहर है, मास्टर नॉलेजफुल बनने की लहर है, बीती सो बीती करने की लहर है, हाई जंप लगाने की लहर है, ये तो उसको आएगा जो ज्ञान के थोड़ा संपर्क में है, मुरली सुनना सुनाना ये नहीं, ज्ञान के संपर्क में अर्थात ज्ञान की बातें उसके अंदर गई है थोड़ी सी, एक पॉइंट भी अंदर समाया हुआ तब होगा, नहीं तो नहीं। आगे क्या कहा बाबा ने फिर वानप्रस्थ के बारे में, तुम सब कौन हो, वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ क्या करते है, गुड़ियों का खेल नहीं करते, क्या करते है वो, सदा एकांत और सुमिरन में रहते, सुमिरन भक्ति का शब्द है, सुमिरन एक के अंत में खोए हुए या सुमिरन में रहते,
स्मृति के स्वरूप,
स्मृति स्वरूप होते है, फिर वो बाबा ने ड्रिल कराई थी बीच में, वानप्रस्थी अर्थात
एक के
वानप्रस्थ, चार आश्रम है सबसे, वो बाबा का अर्थ बताते हैं, संसार इसको दूसरे अर्थ से लेता है,
ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य आश्रम, अगर 100 साल की उम्र है तो 25 25 25 25, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम पहले 25 वर्ष, फिर गृहस्थ 50, 50 के बाद 51 52 1 1 1 1 बताता है ना, वन अर्थात अभी वन में प्रस्थान करना, माना वन की तरफ जाना, उसको कहा जाता है वानप्रस्थ आश्रम,
वन
वो तो शब्द है ना, वो इसके रीति से जोड़ते हैं कि 50 हो गया, मतलब अभी समझ लो कि अभी आपको वन में जाने का, वन मतलब जंगल ना, मधु वन बन वन बन, ये जो भी है ना ये जंगल, मतलब वानप्रस्थ अर्थात जंगल में जाना, पर उसमें भी और दो प्रकार है, मतलब वानप्रस्थ एक तैयारी है संन्यास आश्रम के लिए, 25 वर्ष जो है 50 से 75 तक संन्यास आश्रम के लिए तैयार, एकदम गृहस्थी सन्यासी नहीं बन सकता इतनी वासनाओं के साथ, उसको धीरे धीरे निवृत्त होना पड़ता है, वनप्रस्थ कब लिया जाता है, जब बेटे का मुंह देखने के बाद, एक नियम, पोते का मुंह देख लिया, सारी जिम्मेवारी बेटों को दे दी, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अभी उसके बाद फिर वन में जाओ, उसमें फिर समाज सेवा की जाती है, उसमें भी दो प्रकार है, तापस वानप्रस्थी और एक होता है संन्यासिक वानप्रस्थी, उसमें कुछ लोग वन में जाते हैं, कुछ लोग संसार में ही रहते हैं, यही रह के समाज सेवा करो, अच्छे कार्य करो, या फिर अध्ययन करो, शास्त्र पढ़ो, गुरु करो, गुरु किया जाता है वान को, और उसके बाद में फिर संन्यास की तरह, पर बाबा उसको किस रीति से कहते हैं, वाणी से परे, एक के अंत में खोना, सुमिरन में रहना, स्मृति स्वरूप बनना, ये और क्या कहा, ये यहाँ पूरा हुआ, और थोड़ी एक, एक कोई तो एक लाइन है वहां पर, हाँ, बाप और बच्चे क्या चाहते हैं, समान बनाना या फिर समाना, समाना समाना ही या समाना ही समान बनना है, या समान बनना ही समाना है,
समान बनना ही
समाना,
या
विदेशियों से मुलाकात नहीं, मैसूर से बात किया बाबा ने, क्या कहा हमने, थोड़ा तो डिस्कस कर लिया कि इतने भाग्यवान हो, सर्वश्रेष्ठ हो, बाप अपना वतन छोड़कर तुमसे मिलने आता है, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था भगवान से बात करेंगे, टोली खाएंगे, बैठेंगे, और 4 दिन की जो यात्रा है उसके बारे में कहा, फिर मैसूर से वहां तक 4 दिन की यात्रा, कौन दूर से आया है, ये बाबा का फेवरेट प्रश्न है, हमेशा पूछते रहता है, उसको बड़ी खुशी होती है बात में, कौन दूर से आया, तुम या मैं, उत्तर उसको पता है, इसके लिए उसको बड़ी खुशी, विदेशियों को हमेशा पूछता है ना बाबा ये कौन दूर से आया, तुम आए हो या मैं, फिर आप खुद ही उत्तर देता है,
शरीर में आने में टाइम लग जाता है,
परंतु कैसे आए हो, थकावट नहीं, क्योंकि आ रहे थे 4 दिन की यात्रा, सफर भी कैसा था,
कब मिलेंगे,
क्या कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सोचते सोचते आए, तो वो निरंतर योगी की स्थिति थी, जैसे योग
कमाई थी,
वो कमाई थी, योग था उसमें भी, तो योगी था, तो जहां पर फिर बाप की याद है वहां तकलीफ, थकावट नहीं, कष्ट नहीं, गुलाब का उदाहरण दिया।
प्राप्ति के आगे
गुलाब का उदाहरण क्या है
बाबा जी? हम सोचेंगे देखो थके बेचारे इतने दिन से, बाबा ने क्या बोला?
चार दिन का भी योगी वो कमाई हुई देखा, कमाई देख रहा है पॉजिटिव, वो कमाई देख रहा है, थकावट नहीं देख रहा है, और उसमें कह रहा है कि जैसे गुलाब में कांटे लगे रहते हैं उसके बचाव का साधन है, वैसे ये तकलीफें भी बाप को याद दिलाने का साधन है। जितनी ज्यादा कुछ दिन पहले वरदान था ये, और वो जो मूर्ति वाला था वो भी वरदान था कुछ दिन पहले,
वहाँ पर उदाहरण
कुछ दिन मतलब कुछ महीने पहले, अभी अभी तीन चार महीने पहले, याद तो है ना शिवानंद भाई? तो जितनी ज्यादा तकलीफ है उतनी ज्यादा बाप की याद, तो तकलीफ है क्या है? बाप को याद दिलाने का साधन है, प्राप्ति का साधन है। फिर यहाँ से बाबा ने वो अधिकार के बारे में आ गया फिर, कि तुम सब अधिकारी आ, तुम हो अधिकार, कौन सा अधिकारी हो या जन्म से अधिकारी हो, सुख शांति
बाप
के जो खजाने, सुख शांति आनंद, ये आपके खजाने। अधिकारी हो, सुख ना हो, ऐसा खुश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता बाबा ने कहा।
वहाँ पर जो ये जो बाबा ने बताया ना, एक उदाहरण दिया है ना बाहर का, जब वो बाहर के जो दुनिया के लोग,
दुनिया के नास्तिक भी होता है वो दुखी होता है तो क्या कहता है? हे
भगवान।
वो ऐसी एक सभा का दिखाते ना, एक नास्तिक व्यक्ति था और विदेश में उसको काम दिया गया था, उसका टॉपिक था कि भगवान इस संसार में है नहीं। तो वो अपने इस बात को प्रमाणित करता है, लोग बताते हैं इसको, कई सारे कोटेशन करता है यहाँ वहां के, यहाँ वहां के, और सत्य सिद्ध कर देता है कि भगवान इस संसार में नहीं है। और लास्ट में जब उसका भाषण पूरा होता है तो कहता है थैंक गॉड, आखिर मैंने प्रूव कर दिया कि भगवान नहीं। तो ये हर आत्मा के अंतर्निहित है ये भगवान पर विश्वास, वो चाहे कितना भी बड़ा बड़ा नास्तिक हो, वो थैंक गॉड बोलता है कि मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि तुम नहीं हो। उसके लिए भी वो जो थैंक गॉड जो अंतर चेतना से अंतर आत्मा से निकल रहा है। अभी डार्विन ने थियोरी खोज निकाली कि मनुष्य के जो वंशज जो है वो ये धर्म का जो बातें वो सब बोगस है, बंदरों से हम निकले। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये वो पूछ थी पहले, फिर पूछ कम कम होते होते पूछ चली गई, पहले हम चार पैरों पर चलते थे फिर ऐसे सीधे हो गए। तो हमारे जो वंशज है वो कौन है? बंदर है। तो वो तो एकदम नास्तिक, नास्तिक की थियरी है, नास्तिकवाद है। परंतु वो जैसे जैसे बूढ़ा होता गया, ये उसने जवानी में बनाई थियोरी, पर जैसे जैसे तब तक चारों दुनिया में फैल गई और दुनिया ने एक्सेप्ट कर ली थियोरी ऑफ इवोल्यूशन को, पर जैसे वो बूढ़ा हुआ तो वो आस्तिक बनना चालू हुआ, फिर चर्च जाने लगा, फिर उसका विश्वास हो गया बाइबल में, और फिर चीख चीख के कहा कि मैंने ये जो लिखा वो गलत है, भगवान है, पर तब कौन सुनेगा उसकी? तब तक लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि हमारे वंशज जो है वो बंदर ही है। तो वो बेचारा अपने सिर पर हाथ रखा, क्या करूं अभी, कैसे, ये विकासवाद का जो मेरा सिद्धांत है इसको कहा, उसका ये सिद्धांत थियोरी ऑफ इवोल्यूशन को विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है, विकासवाद, कि कैसे एमीबा और ये सब से मनुष्य निर्माण हुआ है। तो कितना भी बड़ा नास्तिक हो परंतु वो भी क्या कहता है? हे भगवान, हे भगवान निकलता है। तो तकलीफों के लिए बाबा ने कहा, जैसे वो वैसे ही है। यहाँ पर भी तकलीफ आई तो बाबा की जैसे कुंती कहती है ना श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण कहता क्या चाहिए बोलो, वो कहती है कि मुझे बहुत पीड़ा विपदा और दुख दो, क्योंकि जितना दुख होता है मैं तुम्हारी याद करती हूँ। वो कृष्ण पूछता है उसको मैं तुम्हें क्या दूँ, तो वो कहती है मुझे दुख दो, क्योंकि दुख के समय ही तुम याद आते हो, जितना ज्यादा दुख उतनी भगवान की याद। एकदम सुख है तो कहाँ कौन किसको याद, भगवान को थोड़ी याद करते हैं लोग। फिर उसके बाद में क्या कहा, ये हो गया अधिकारी का हो गया, और फिर निरंतर का यही है क्या? नहीं, वो आगे है, विदेशियों के साथ है। एक और एक पॉइंट है यहाँ पर, डबल लाइन, वो निरंतर वाली ना, डबल अंडरलाइन निरंतर, वो वही है विदेशियों की, वो विदेशियों में है। चलो वो आया तो बाद में देखेंगे। फिर विदेशियों से मुलाकात, विदेशियों को क्या कहा? सदा किस स्मृति में रहे? फॉरेनर, देश की माफ, देश की तुलना के हिसाब से तो तुम फॉरेनर हो, तो वैसे ही हम परम धाम के निवासी और यहाँ हम फॉरेनर है। तो सदा अपने को क्या समझो कि मैं आत्मा इस संसार में अवतरित हूँ किस कर्म के लिए? विश्व कल्याण के लिए। ये स्मृति सदा रहे। और तो जो बोलोगे, जो सोचोगे, जो कर्म करोगे, और जो जहाँ नजर जाएगी वहां पर कल्याण ही कल्याण होगा। अगर ये स्मृति है तो
लाइट हाउस
का, ये स्मृति ही लाइट हाउस का काम करेगी। जैसे वो लाइट हाउस एक रंग की किरणी फैलाता है, वैसे यहाँ असंख्य रंग की सर्व शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाओगे और आत्माओं को रास्ता दिखाओगे। ये वो लाइट हाउस है जो आत्माओं को रास्ता दिखाता है। जैसे वो लाइट हाउस होता है ना, कोई द्वीप होता है ना, वहां लाइट हाउस होते हैं, बड़े बड़े द्वीप पर्यटक के स्थान होते हैं, ये टूरिस्ट स्पॉट होते हैं ये लाइट हाउस, बड़े बड़े लाइट हाउस जो समुद्र की गतिविधियों को बताते हैं, सब कुछ उसका आकलन कर सब कुछ करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे तुम क्या बनोगे?
लाइट हाउस।
वो भी कैसे लाइट हाउस? चलते फिरते लाइट हाउस। और ऐसे इतने सारे लाइट हाउस सब एक साथ हो जाओगे, हो जाएंगे तो कौन से गीत बजेंगे? वहाँ वहाँ के गीत। बाबा का तो गीत बहुत लिमिटेड है, तो ऐसे गीत बजेंगे। फिर यहाँ पर कितने सारे उदाहरण दिए बाबा ने, देखो पहले तो ये एक उदाहरण दिया, फिर दूसरा जैसे चित्र ब्रह्मा का चित्र है, ऊपर इशारा करते हो, वैसे तुम्हारा हर संकल्प और तुम्हारा हर कर्म भी बाप की तरफ इशारा करे, हर संकल्प बाप की तरफ इशारा करे। अगर ये करोगे तो क्या हो जाएगा? सारे आत्माएं। फिर और एक उदाहरण यहाँ पर, जैसे अभी और गीत गाते हैं, वैसे एक ही गीत, बाप के गीत और तुम्हारे गीत गाएंगे, साज सभी साजों के साथ तुम्हारे गीत गाएंगे, तुम्हारे गुणगान करेंगे लोग जब ये होगा तो। हाँ, फिर यहीं पर है, उसके आगे का ही है कि सब कहाँ आ जाएंगे जब ऐसा होगा तो। तो सबने कहा मधुबन, सब मधुबन में आ जाएंगे तो भक्तों का क्या होगा? तो साक्षात्कार कराना है तुमको, तो बाबा ने कहा कि हाय हाय होगा और तुम उनको वरदान दोगे। सबको ये अनुभव होगा कि ये वही आत्मा है जो दिल तख्त नशीन है, जो बाप के दिल तख्त नशीन है। तो सदा अपने को ऐसे दिल तख्त नशीन समझते हो? फिर ये भी प्रश्न पूछा होगा। फिर उसके बाद में बाबा ने वो प्लान के लिए कहा है ना,
बड़े बड़े प्लान बनाए।
नहीं नहीं, प्लान के लिए नहीं कहा, और एक चीज है उसके पहले, वातावरण का यही है। हाँ नहीं, यही है प्लान है, क्या प्लान आगे बनाना है? नहीं, वो विदेशियों को आवाज बुलंद करो, कुंभकर्ण को जगाओ,
विदेश वाले भारत के,
भारत के कुंभकर्ण को जगा, ये कब होगा? तो प्लान किसी ने प्लान सुनाया, तो प्लान तो अच्छा बनाया पर अभी प्लान नहीं, अभी वातावरण, वातावरण को क्या करो? वातावरण को बाबा ने कहा ना, एडवर्टाइजमेंट करो, एडवर्टाइजमेंट करो, ऐसा वातावरण हो जैसे, वहां तीन उदाहरण दिए, जैसे किसी की प्यासी आत्मा की पानी से प्यास बुझ जाती है, वैसे सुख शांति की प्यास बुझ जाए। एक जैसे यज्ञ की शुरुआत में एक ही दिन में कई अनुभव हो जाते हैं,
एक ही दिन में आते थे
अनुभव हो जाते थे, तो वैसे अनुभव हो। तीसरा, सूर्य की किरणें मौखिक, सबको ये अनुभव हो कि ये सूर्य की किरणें कहाँ से आ रही है। और एक चीज बोला इसके पहले, वहां पर लाइट हाउस के पास सब ये अनुभव करे कि हम जैसे अखुट खजाने की खान के सामने आ गए, ऐसे हो गए कि जैसे सर्व प्राप्ति यहाँ से होने वाली है। ये भी था ना कि मुझे सर्व प्राप्ति यहाँ से होने वाली है। ये कितनी सूक्ष्म सेवाएं है। भाषण तो करो, अभी यहाँ बोला ना, स्पीच तो दो, परंतु वातावरण बनाओ, वातावरण की, ये क्या
बोला कि
वातावरण का आवाज
वाणी से तो
करते हो, वाइब्रेशन की अभी इच्छुक है वो आत्मा है, अभी अभिलाषी किस चीज के इच्छुक, इस चीज
सुनने का कम,
वाइब्रेशन का ज्यादा
पसंद करते हैं
ये, ज्यादा इच्छुक, इच्छुक बोला,
इच्छुक,
इच्छुक है। और क्या कहा? फिर वहां पर अधिकार के पास आ, वहां पर वो अधिकार नहीं, बीच में एक पैराग्राफ आता है, वो ब्राह्मण अर्थात अधिकारी, वो बड़े जो होते हैं वो दिल तक का मशीन हो, वो गलीचे पे भी पैर रखते तो गलीचे पे रखते, यहाँ तुम पैर ही नहीं रखो, वो लोग तो गलीचे पे रखते, तुम पैर रखो ही नहीं बोला।
जैसे बाबा ने पिछली बार कहा, स्नेह की गोद में,
स्नेह की गोद में, स्नेह के झूले में, स्नेह की, हाँ स्नेह के पाव से चलते हो, तो वैसे यहाँ चलो, ये ऐसा तख्त है इसमें चलना फिरना खाना पीना बैठना एक ही जगह, कभी और कहीं जगह एक मुरली चल रही थी जिसमें ऐसा कहा था ना बाबा, सदैव दिल तख्त नशीन रहो। तो बच्चों ने प्रश्न पूछा था कि बाबा दिल तख्त नशीन, दिल तख्त पर रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे? तो बाबा ने क्या कहा था उसमें, एक कहीं और की मुरली, बाबा ने कहा यह ऐसा तख्त है कि सब कार्य इस पर बैठकर किए जा सकते हैं। आज भी वही था ना, चलना फिरना, इतना बड़ा तख्त है ये, इस पर ही सारे कार्य हो सकते हैं। और क्या कहा? फिर ये अधिकार का यही आता है ना, वापस अधिकार, अरे हम मैसूर का हो गया क्या, मैसूर में हाँ एक पॉइंट भूल गया, वो अभी याद आया। मैसूर में कहा ना बाबा ने कि अमृत वेले से अधिकारी आत्मा हूँ, अमृत वेले से अधिकारी, बाप का जो अधिकार खजाने हैं सुख शांति वो सब मेरे हैं, तो अधिकारी आत्मा हूँ, माया ये तिलक मिटा ना दे, अगर ये मिटाएंगी नहीं तो क्या हो जाएगा, अविनाशी भव का वरदान प्राप्त हो जाएगा, अविनाशी भव का वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो ये अगर तिलक ना मिटे तो वो बुजुर्ग वगैरह इधर ही है ना, बुजुर्ग अनुभवी। अच्छा वापस विदेशियों में और क्या है, और भी कुछ है वहां?
वायुमंडल
की, वायुमंडल की भी विस्तार किया बाबा ने यहाँ पर थोड़ा, विदेशियों से मिला था नहीं हो गए मैसूर के साथ। वो क्या ये पॉइंट जो है ना सारे कुछ कुछ अनरिलेटेड है, वो पता नहीं बीच में कुछ बिखरे हुए हैं, जैसे कुछ पॉइंट अभी चल रहा है फिर बीच में वो मधुबन वाली आ गया, फिर बीच में और कुछ आ गया, फिर बीच में और कुछ आ गया, इस तरह से। नहीं ये अधिकारी की पॉइंट चल रहे वो हो गया, तीन सूर्य की, सूर्य की किरणें कहाँ से आ रही है वो हो गया, उसके आगे
छत्कार नहीं,
सूर्य की किरणें के आगे वो हो गया, वो हाँ हाँ डेट की बात है अभी, कि डेट कॉन्शियस नहीं हो जाओ, इंतजार इंतजाम।
बाबा ने कहा अगर कोई टाइम पूछते समय पूछते अगर समय बता दे तो पुरसारस नहीं कौन मतलब कौन
लेंगे जमा, वो टाइम पर जमा होगा, बहुत काल का जमा नहीं होगा, टाइम का डेट का जमा होगा।
वातावरण बनाने की बात की तो बाबा ने कहा कि सब होगा जब निरंतर स्थिति में,
हाँ ये निरंतर वाली पॉइंट है यहाँ पर, फिर कि निरंतर को अंडरलाइन करो हर चीज में, निरंतर ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही चीजें में निरंतर इसको
डबल।
हाँ फिर कहाँ से किरने आ रही है सबकी नजर जाएगी इस बात पर, वो कब होगा जब ऐसी स्थिति में होंगे वो भी एक बोला, चारों सब्जेक्ट की निरंतर बोली हर चीज में निरंतर होना,
ऐसी स्थिति माना किसके लिए,
ये स्थिति अभी कौन सी है, वो बीच में पॉइंट आ गया, वो जो पहले का बोल रहे हैं ना बाबा अवतरित आत्मा हूँ उसके लिए ये, और फिर एक ये भी चीज है, ये तो हो गया भाषण, फिर प्लान भी कैसा बनाओ, जल्दी बनाओ, ऐसा नहीं कि लेट, प्रैक्टिकल हो और जल्दी बनाओ, और उसमें भी तन मन धन की शक्ति है उसमें लगाओ, उससे फायदा होगा। पहले तो बताया प्लान कौन सा बनाए, वो बात ही वैसी चल रही है ना, किसी ने पूछा क्या प्लान बनाए तो बाबा ने प्लान सुना, उसके बाद में प्लान तो है उसमें भाषण की बात और वातावरण, वातावरण भी बनाओ और प्लान भी थोड़ा जल्दी वाला बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ,
कल करेंगे
कल, कल नहीं आज नहीं, नहीं अभी मेरे ख्याल से फिर वो लास्ट में है सेंटर खोलेंगे, वो ऑफर करेंगे आपको, आवाज फैलेंगे किसी को भी कोई भी ना छूटे,
हाँ बोलेंगे कि हमारे यहाँ आगे खोलो,
तो यहाँ ये पूरा हुआ। तो आज के मूल्य में मेन तो वो जो अहम और ये जो गुड़िया है ना उसको बनाना, अपने भाग्य की स्मृति, ब्राह्मणों की जन्म पत्री गुड़िया, और ये भाग्य की बातें वापस,
और ये जो निरंतर चारों
सब्जेक्ट, निरंतर हो और चारों सब्जेक्ट में भी निरंतर हो, ये भी अच्छी पॉइंट है। और वो जो स्पीच ही देना सब कुछ नहीं है, आजकल लोग वातावरण वाइब्रेशन के इच्छुक ज्यादा है, स्नेहा के बांध से, स्नेहा के
स्नेह से दिल में रखे स्नेह के बांध
से आत्माओं को घायल करो, हाँ उसमें भी नम्रता हो, उसमें मधुरता हो, अथॉरिटी हो, ये सारी चीज हो, रमणीकता हो, तो ये सारी चीजें हो, केवल वहाँ बैठ के पॉइंट को जोड़ना नहीं है या तो याद नहीं करना है
सारा उसका सब करके,
पहले ही अथॉरिटी के पहले ही उसको वो सब्जेक्ट पर भी मास्टरी हो।
मुरली में ज्यादातर वायुमंडल वाइब्रेशन पे ही बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा बोलते हैं बाबा वाइब्रेशन, देखो बाबा को किसी ने पूछा सेवा क्या करनी है, बाबा क्या बात कर रहे हैं, स्पीच कैसा देना वो बता ही नहीं रहा है, वो सेवा कौन सी करना है वो नहीं, बाबा क्या करते हैं वायुमंडल बनाओ,
वायुमंडल को पावर बनाने के लिए
यही सब कुछ बताओ,
आपके विचार क्या है,
वायुमंडल को कौन सा वायुमंडल? भाषण के टाइम पे?
भाषण नहीं, मतलब भक्ति, जैसे भक्ति के द्वारा जो सेवा,
जैसे योग युक्त वायुमंडल बना
रहे, उसके लिए सबसे मुख्य एक धारणा है जितने दिव्य गुण है। जब भी मैं उन दिव्य गुणों को देखता हूँ और सोचता हूँ इसमें से क्या नहीं है अपने में, और बहुत सारी ऐसी लगता है कि ये 50% है, ठीक है ठीक है ठीक है, पर ऐसे दो ऐसे दिखते हैं कि जो हमेशा लगता है ये नहीं है। एक है उसमें का गंभीरता और एक है निरंकारिता। निरंकारिता क्योंकि अहंकार बहुत रहता है अंदर में आत्मा में कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वो हूं। ये जो अहंकार है कर्म क्षेत्र पर वो उत्पन्न होता है। एक तो ये, उसको भी छोड़ दो, सबसे मुख्य जो चीज है जो ब्राह्मणों को धारण करनी है और जिससे वातावरण योग युक्त होगा वो एक ही है, गंभीरता। हाँ, गंभीरता अर्थात एक होता है अंतर्मुखी, तो हम है अंतर्मुखता, फिर भी एक अलग चीज है अंतर्मुखी। चलो सुबह अंतर्मुखता का जितना भी पड़ोस में वो कहते अंतर्मुखी हो तो चलो हम अंतर्मुखी सुबह है शाम में है योग कर रहे ज्ञान कर रहे वो कर रहे, पर कर्म क्षेत्र में अंतर्मुखी कभी कभी होना कठिन है, उसको हम वहां छूट देते थे चलो, पर गंभीरता के लिए छूट नहीं दी जा सकती। अगर कोई गंभीर है, हम क्या कहते हैं जैसे ही गंभीरता की बातें चलती है फिर सब लोग यही कहने लगते कि बाबा ने कहा रमणीक रमणीकता का बैलेंस होना चाहिए। अरे बैलेंस तो तब हो ना कि दोनों समान हो। अभी रमणीकता 90% है, गंभीरता खाली 10% है इसके लिए तो। और जैसे रमणीकता के बारे में गंभीरता के बारे में बात की जाती है तुरंत सब लोग
गंभीरता में,
गंभीरता नहीं सन्यासी नहीं बनना है, ऐसी सारी बातें आ जाती है।
गंभीरता का दूसरा भी अर्थ होता है कि भाई इस बात में गंभीर, धारणाओं में गंभीर।
हाँ, वो दूसरा अर्थ है उसका। यहाँ गंभीरता का मेरा जो अभी जो मैं कर रहा हूँ सीरियसनेस, गंभीरता अर्थात गंभीर, उसके विरोध में है हंसी मजाक, इसके साथ उसका कंपेरिजन करो। तो ये जो एकमात्र धारणा, अगर बाकी सारी धारणा अथक, सभी ब्राह्मण अथक है, काम दो कितनी सेवा तो दिन रात करते रहेंगे। यथार्थता है, मधुरता चलो सब में है ही, थोड़ी बहुत है ही, ज्यादा से ज्यादा है। यथार्थता, गंभीरता, रमणीकता, ये सारी चीजें, पर गंभीरता एक ऐसा गुण है कि जो बहुत ही कम आत्माओं में, बहुत कम आत्माएं हैं,
स्वयं के पुरुषार्थ में गंभीरता
वो होता अपने पुरुषार्थ, जैसे ये कह रहे ना शिवानंद भाई, गंभीर हो जाना धारणाओं के लिए पुरुषार्थ मिले वो एक अलग गंभीरता। मैं व्यवहार की गंभीरता की बात करूं, गंभीरता के दो अर्थ है, एक है व्यवहार में गंभीर होना हंसी मजाक के विरोध में,
अनावश्यक नहीं
होता। हाँ, हंसी मजाक के विरोध में जो स्वभाव है वो गंभीर। दूसरा अर्थ है गंभीर होना, मतलब कि भाई तुम ये बात को थोड़ा गंभीरता से लो, ये बात जो है पुरुषार्थ से गंभीरता से लो, जिम्मेवारी से करो, अच्छे से करो, अपनी पूरा अकाउंटेबिलिटी हो, आंसरेबिलिटी हो, कि ऐसे मतलब पूरा इससे करो, वो गंभीरता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ गंभीरता मैच्योरिटी, गंभीरता अर्थात हंसी मजाक के विरोध। एक होता है बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, एक होता है चुप रहना, उसमें साइलेंस आ जाएगा, उसमें अंतर्मुखता आ जाएगी, उसमें मौन आ जाएगा, मौन और अंतर्मुखता उसमें समाया हुआ। अगर ये एक गुण है ये एक ऐसा गुण है कि इसके ऊपर मतलब थोड़ा काम करने की जरूरत है, ये विदाउट उसके नहीं आएगा। कुछ कुछ गुण ऐसे होते हैं कि जिसमें हमको जरूर उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई कई है जिनका स्वभाव ही बचपन से गंभीर है, वो अलग बात है। कई कई है जो अज्ञान में भी है, कई कई लोग जो गंभीर ही होते हैं। तो गंभीरता एक बहुत दिव्य गुण है। जैसे मम्मा, वो गंभीर है, उसको थोड़ी ना कोई बोलते है कोई ऐसा कि अरे ऐसे ऐसे रहेंगे तो सन्यासी बनेंगे, ऐसा नहीं। गंभीरता अर्थात जहाँ जरूरत है वहां हंस भी रहे, परंतु ये गुण और हमारी स्टेज में बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी ज्ञात है। कईयों में होगा तो मुझे अपने लिए लगता है उसमें बहुत बड़ी ज्ञात है। तो वो अगर गुण आ गया गंभीरता, तो वातावरण स्वतः ही योग युक्त होता है। जिस क्षेत्र में हम कार्य है कार्यरत है वहां पर अगर हम गंभीर है तो किसी को हंसी मजाक ज्यादा करने, हंसी मजाक का भी अपना एक महत्व है, रमणीकता का भी महत्व, पर वो बहुत ज्यादा है, वो 90% वही तो चल रहा है, और ये जो है 10%। हम बात कर रहे हैं
बराबर
बैलेंस की, तो पहले बैलेंस के लिए उसको कम करना पड़ेगा और इसको बढ़ाना पड़ेगा, और वो लाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, वो है ही, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, वो तो है ही। प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं है, न्यारा बनने का पुरुषार्थ है सारा। उसी तरह रमणीकता का पुरुषार्थ नहीं है, रमणीक तो है ही, गंभीरता का पुरुषार्थ करना है। तो वो एक
गंभीरता के अभाव में बहुत सारी बातें ऐसे निकल जाती है जो मुझसे नहीं निकलनी चाहिए।
हाँ
उसमें अपने हम सोमवार को भूल जाते हैं,
सब 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 भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है वो तो बाद में कुछ घंटों के बाद याद आता है। तो वो जो स्पिरिट है ना वो बेहोशी की अवस्था है। ये जो हमारा कर्म क्षेत्र है ना हमको बेहोश कर देता है, मूर्छा में डाल देता है, वहां पे हमको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। और उसमें अगर बहुत ज्यादा काम है, अधिकता अति व्यस्तता वो और भुला देता है, वो फिर कुछ भी याद नहीं रहता। हमारा ऐसा ही होता है ना, कितना चलो पहले 30 पेशेंट आए ठीक है, 40 पेशेंट तो भी ठीक है, अभी कभी 60 और 70 आने के बाद में तो ये ब्लॉक हो जाता है, फिर वो ज्ञान गायब, यानी ज्ञान ही गायब हो जाता है। वो देखते 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 हेडेक वेडेक कुछ नहीं होता है, पर वो कम हो जाता है क्योंकि यहाँ बुद्धि यूज करनी होती है ना। वो बड़ी बड़ी फाइल लेके कोई आए और उसको देखो और उसमें सोचो और उसको क्या करना है, बहुत ज्यादा बुद्धि का काम है। तो उसमें फिर और उस वही पीरियड है कि वहां गलतियां हो सकती है। गलतियां कहां पर? वो उसमें नहीं, ये इस तरह की धारणाओं में, अध्यात्म की धारणा में, वहां अहंकार होने की संभावना है, वहां पर मैंपन और ये सब आने की संभावना होती है। हरेक के कार्य क्षेत्र अपना अपना है, परंतु कार्य की व्यस्तता जहां हो जाएगी वहां पर विकारों की प्रवेशता हो सकती है। तो वो एक गुण हमेशा मुझे मतलब लगता है कि गंभीरता अगर आ जाए तो वातावरण स्वतः ही अलौकिक हो जाएगा,
सदा नहीं रहता है।
हाँ मतलब उसमें पुरुषार्थ करने की बात है। वरदान महादानी वरदानी हर समय देने वाले विश्व कल्याण कर वायुमंडल
वो नहीं दानी बनो
हर समय दान करना है, हर समय मनसा शक्ति हर समय देना है, मनसा शक्ति से वातावरण वाइब्रेशन तड़पती हुई आत्माएं, क्या कहा तड़पती हुई आत्माओं को, क्या कोई तो एक शब्द है ना, क्या कहा क्या उनको उनका रास्ता बताना, लाइट हाउस, यहाँ वही लाइट हाउस वाली बात है, लाइट हाउस जैसे बाप लाइट हाउस है वैसे तुम भी लाइट हाउस हो, आप तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताओ,
एक स्थान पर बैठे
सभी आत्मा देना है, कोई भी आए उसको कुछ ना कुछ देना है, जरूरी नहीं ज्ञान ही देना है सबको ज्ञान छोड़कर अभी कुछ और देने की सोचो ज्ञान देने वाले हम अगर पीछे हट गए तो 10 खड़े हैं प्यास बुझाने के लिए, उनकी नहीं खुद की उसका जो होना है होने दो, हमारा कल्याण हमको प्रजा बनानी है, बस ये संकल्प है हमको प्रजा बनानी है, चाहे उसके पास टाइम हो ना हो, चाहे उसने 10 बार सुन के आया म्यूजियम शांतिवन से 30 बार से, पर हम उसको सुना के रहेंगे क्योंकि हमें अपना भाग्य बनाना है, हमें प्रजा बनानी है, उसका जो होगा होगा वो देखेगा मतलब बड़ी बेरहम से रहन करते हैं रहन दिल जब बन रहे कोई हमारे गेस्ट आते हैं हमको लगता है अभी इनको जल्दी जल्दी इधर 5 मिनट में दिखा दे और कहीं और ले जाएंगे कहीं, तो वो जो भाई पकड़ता है तो छोड़ता ही नहीं, अभी क्या करे, ऐसे भी हो जाता है
कभी 2-4 मधुर निवासियों से मिला दिया
तो मतलब रहम तो करना है, पर थोड़ा रहमदिल बन के रहम करना है,
तड़पती ही
बेरहम से रहम मत करना किसी पर,
तड़पती ही आत्मा का जो शकास देना है ना, एक बहन बता रहे थे जो ऑफिस जा रहे थे जल्दीबाजी में तो सामने काटा हुआ व्यक्ति पड़े हैं, काट दिया तो उन्होंने खाली बाबा को बोला इसको मुक्ति दे दो जल्दी जल्दी बोल के चला गया। फिर वहाँ दोपहर 1 बजे के बाद उसका ये चालू हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, दिमाग शून्य हो गया, मैंने उसको जास्ती सकाश नहीं दिया, रहम नहीं किया, खाली ऐसे ही बोल के आ गया, फिर पसीना छूटना शुरू हो गया,
कम सकाश दिया, क्वांटिटी डोज कम दिया,
बाबा से फिर शक्ति लेके फिर वहाँ गया तब जाके उसको
शांति मिली थी एक है अज्ञानियों को ज्ञान सुनाना, एक है ज्ञानियों को ज्ञान सुनाने नहीं जा सकता। एक बहन बता रही थी ज्ञानियों को अगर ज्ञान का इंजेक्शन दिया जाए तो, एक बहन सुना रही थी अभी कल, रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन होता है, इसके लिए ज्ञान है वो ज्ञान नहीं सुना, रिएक्शन करते हैं
वो मौके पे ही सुनाया जाता है।
कर्मों के द्वारा गुणों का दान सर्वश्रेष्ठ दान है, जो सबसे कम दिया जाता है। कर्मों के द्वारा हमारे अंदर जीवन में अगर कोई गुण है वो दिखे, वो सबसे, मनसा तो यथाशक्ति कर रहे हैं, वाचा सभी कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं करता है वाचा का, सब ज्ञान देते, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और तीसरा जो है वो कर्मों द्वारा गुणों का दान, वो अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करना, किसी को कुछ कह नहीं रही है पर कर रहे, वो भी दान दे रहे हैं हम गुणों का, खुश रहना, अथक रहना, यथार्थ रीति से कार्य करना, हर्षित मुख रहना, खुशी रहे, खुशी कर, खुशनसीब, खुशनुमा चेहरा, हर्षित चेहरा, ये सब गुणों का दान है। अपनी ड्यूटी एक्यूरेट, टाइम पर आना, पंक्चुअल आना, सब कुछ ठीक करना, वो एक गुणों का दान करना है, वो सबसे कम है। हाँ, वो ये जो है ना, एक्चुअली ये कोई कॉन्फ्रेंस में आए, ज्ञान सरोवर की कॉन्फ्रेंस में आए, सुबह लेक्चर, दूसरे दोपहर में लेक्चर, बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर, वाह 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 किए, सब साफ सफाई, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, खाना बढ़िया लगे, परंतु याद क्या रहा जाने के बाद? वो एक भाई जो अपने डिपार्टमेंट में बराबर एक्यूरेट आते हुए देखा, अपना काम, उसको भाषण करने नहीं आता, बोलते नहीं आता, कुछ करने नहीं आता, पर दिनचर्या इतनी एक्यूरेट, उसकी दिनचर्या को रोज देखा, बस उसकी दिनचर्या देखकर ही उसका वहां जीवन परिवर्तन हो गया। वो कॉन्फ्रेंस गई एक तरफ, वो जो भाषण सुने थे और जो वाह वाह की थी और तादियां बजाई थी और जो भोजन खाया था, कुछ याद नहीं है अभी। अभी याद है तो बस वो और उसकी धारणाएं, और उसी धारणाओं से किसी का जीवन परिवर्तन हो। तो ये सबसे बड़ा गुण है, परंतु ये इतना गुप्त है, दिखता नहीं है। इसमें नाम मान जिसके जिससे वो व्यक्ति सीखा, उसको ये पता भी नहीं कि मेरे वजह से कोई सीखा है। ये इतनी गुप्त कमाई है, एक है बड़ा दिखावा और वो जितना ज्यादा दिखावा उतनी कमाई कम ये उल्टा हिसाब है इधर जितना ज्यादा दिखावा उतनी ही कमाई कम। जितना जो गुप्त दान का महत्व है, गुप्त पुरुषार्थ का महत्व है, हर चीज जो जितनी गुप्त है। नहीं तो हॉस्पिटल में आओ तो देखो, जो भी ओपीडी बने वहां नाम लिखा है किसने डोनेट किया है, अभी उनकी इच्छा थी वो करने की, हर कमरे के ऊपर लिखा है कि भानु दास दिस दिस दिस, अभी उन्हीं की इच्छा थी तो लगा दिया, ठीक है, पर उनके पुण्य तो कम हो रहे हर दिन,
जितना पढ़ता है
जितनी बार पढ़ोगे उतने बार पुण्य कम। अगर किसी ने कुछ दिया और वो चुपचाप दे दिया, उसका कोई खबर ही नहीं किसी को, गुप्त दान महापुण्य। तो वो जैसे है वैसे ये भी है, कर्मों द्वारा गुणों का दान, इसमें नाम मान बहुत ही कम मिलता है, पर वाच्य की सेवा, भाषण, उसमें बहुत नाम के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो एक चस्का है, चस्का ही है वो, यहाँ वहां जाओ और भाषण करो, वो चस्का ही है, एक बार लग गया, क्योंकि वहां फिर भीड़ बढ़ती जाती है, फिर वाह वाह होती है, फिर वाह वाह होती है, तो नाम ब्रह्मा कुमारी, इसका अंदर खुशी है हमारी, मैं ऊपर से ब्रह्मा कुमारी, अंदर मैं, फिर सेवाओं के समाचार भी सुनाते हैं, वो भी सेवाओं के समाचार नहीं होते, वो मैं के समाचार होते, मैंने क्या क्या किया,
मैं बहुत बड़ा हो
जाता। अच्छा चलो, मतलब वहां हम गए तो ये सेवाएं हुई, अच्छा कोई दूसरा गया तो उसकी सेवा समाचार सुनने का इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? वो यज्ञ की सेवा का समाचार नहीं है, यज्ञ की सेवा का समाचार सुनाने में इंटरेस्ट, स्वयं की मैं का समाचार सुनाने की इच्छा होती है आत्मा को, कि मैंने ये किया, मैं ऐसे ऐसे भाषण किया, इतने लोग आए, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और इतने हजारों लोगों की सेवा हुई,
लास्ट में बाबा ने कर लिया।
हाँ, लास्ट में वो तो ब्राह्मणों की तो भाषा ही अलौकिक है, बाबा करा रहा है सेवा अर्थ, बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा करण करावन हार है, ये ब्राह्मणों की भाषा ही ऐसी अलौकिक है, कश्मीर क्यों जा रहे हैं सेवा अर्थ मीटिंग सेवा अर्थ, ये सब ब्राह्मणों की भाषा में ऐसे घूमना फिरना, ऐश करने जाना, ऐसे सब शब्द थोड़ी यूज करते हैं, तो संसार के लोग यूज करते हैं, यहाँ अलौकिकता है। अच्छा भाई साहब कहाँ है ड्यूटी? अभी तो ड्यूटी का टाइम है, रेस्ट पर है, ऐसे बोलते हैं अरे तो ड्यूटी ओवर है ना, अभी कहाँ है? रेस्ट पर है, ये अलौकिक भाषा है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है चुप रहना, ये सबसे सबसे कठिन काम है पर दुनिया का,
लेकिन सिर्फ चुप रहना, मुख का चुप रहना,
चुप रहना अर्थात क्या? मौन, अर्थात मौन मतलब स्वचिंतन, मौन का एक परिभाषा है मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात बाप की याद, मौन अर्थात ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन, ये है मौन। कोई मौन भी रहता है पर अंदर से षड्यंत्र कर रहा हो किसी के विरुद्ध में, तो ये भी मौन है, उसमें भी मौन ही रहा जाता है, क्योंकि मौन होता है तो बुद्धि एकाग्र होती है। अभी इसके विरुद्ध में क्या क्या कर सकता हूँ, तो सोचे कि इसने मुझे, मैं अब वहां गया था तो मुझे टोली मैंने मांगी थी दी नहीं, अभी कैसे ये अपने डिपार्टमेंट में आया तो क्या करूँ अभी इसका, इस तरह से षड्यंत्र बनाते ना इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्या करूँ अभी ये प्रैक्टिकली बातें है सारी, इसकी चर्चा किसी क्लास में नहीं है जो भी पुरुषार्थ की, क्योंकि वो अलग प्रकार की क्लासेस है, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है, वैसा जैसे हम जा रहे हैं बहुत अर्जेंट काम से, हम खुद जा रहे थे, और आपने किस काम से रोका लेकिन मैं नहीं रुक पाया, अब वो देखना ही पसंद नहीं करते, मैंने बोला तो रुका ही नहीं कभी,
दादियों से भी नाराज हो जाते कभी कभी, अभी दादी को तो पता ही नहीं कि भाई किसी ने ओम शांति बोला, वो पहले बीमार है, बहुत सारी चीजें उनको, वो लोगों को पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है, वो तो खाली देखते हैं हाँ ठीक है स्टेज में आगे बहुत अच्छा है हेलो, उनको पता ही नहीं अभी 10 मिनट पहले क्या हालत थी, और फिर क्यों उदास हो जाते कि दादी ने हमको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, हमारी तरफ देखा ही नहीं, हमने ओम शांति किया देखा और पहचाना भी नहीं, देखा ऐसे करते, ये इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, उससे उदास भी होते हैं लोग, चुप रहना मतलब वो सप्रेशन दमन होता है अंदर भावनाओं का, वो इसके लिए चुप रहना जो है, एकांत जो है ना, वो एक होता है, हाँ एक होता है एकांत, एक होता है उसका दूसरा एकाकीपन, एकाकीपन जो है ना वो विकृति है, वो अकेला महसूस करना एकाकीपन, एकांत आनंद की अवस्था है, और अकेलापन जो है वो दुख की अवस्था है, वहां पे अकेलापन में दुख है, अकेलापन में कोई इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, अकेलापन में कोई एक पीड़ा है अंदर, वेदना का आभास है, कोई कमी है, रिक्तता है, अपूर्णता है, और एकांत अवस्था आनंद की है, जिसमें व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, इतना भरा हुआ है ईश्वरीय ज्ञान से, प्राप्तियों से, संकल्पों से, श्रेष्ठ महान चिंतन से, तो हमको एकांत की अवस्था, एक के अंत में खोना, इसको बाबा एकांत कहते हैं, बाबा ऐसा कहीं नहीं कहते अकेले बन जाओ, अकेलापन ये शब्द नहीं आता है मूल में, एकाकीपन और अकेलापन ये जो है ना ये निगेटिव शब्द है, तो सबसे श्रेष्ठ दान है कर्मों द्वारा दान, कर्मों द्वारा मतलब खुश रहे, हम किसी को कह नहीं रहे बस हम खुश है, हम ऑटोमेटिक खुशी का दान करते हैं, कोई निरंकारी है कोई कह नहीं रहा है कि मैं निरंकारी हूं, पर ऑटोमेटिक निरंकारिता का दान कर रहा है, जितने दिव्य गुणों की लिस्ट है उसको हम एक एक करके देखें और रोज सोचे कि इसमें से मुझमें क्या नहीं है, 50 मतलब एकदम 10% से भी जो कम है वो कौन सा गुण है, 10-20% से भी जो कम है उसको निकाले और उसको फिर उसके ऊपर हम पुरुषार्थ अपना फोकस करें कि भाई ये एक गुण है जो मेरे में बिल्कुल नहीं है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिर उसके बारे में पढ़ना है थोड़ा, वो जगदीश भाई की किताब है दिव्य गुणों की, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, वो इस तरह उसके बारे में क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी कम है, फर्स्ट हम उसके बारे में सबसे पहले जानकारी, अच्छा बाबा ने क्या कहा और संसार की आत्माओं ने इसी बात के बारे में क्या कहा, जैसे खुशी, बाबा ने खुशियों पर बहुत सारी मूल्यां चले, पर संसार के लोग क्या कह रहे हैं अभी इसके बारे में, उनका भी थोड़ा ओपिनियन ले लो, थोड़ा कंपेरिजन के लिए अच्छा होता है कि इसने संसार खुशी के लिए क्या कहा, खुश रहने की विधि क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 संसार के लोग जो भगवान को भी नहीं मानते किसको ही नहीं मानते वो भी खुश रहते हैं, उनका भी थोड़ा ले लो जहां से हो सके संग्रह करना है, नहीं मतलब बता रहा हूँ गुण मतलब जिस चीज, जैसे आपको लगता है ये पवित्रता मेरे में कम है और बाबा ने जितनी पवित्रता की बातें बताई वो इतनी हाई फाई बातें हैं कि मुझे जो हो रहा है वो इन सब में कहीं है ही नहीं,
एक कुमार की माता जी एक दूसरी माता जी सलाह लेने गई, हमारा बेटा तो ऐसे ऐसे है वो भी ज्ञान में है और जिससे सलाह लेने गई वो भी ज्ञान में है और वो भाई भी ज्ञान में, तो बताइए क्या करना चाहिए, तो वो जवाब दे रहे हैं देखो ऐसा है अभी ज्ञान जो समय चल रहा है ना आज तो पूरे हो गए अब लक्ष्मी नारायण की जोड़ी वाला तेरे
हाँ तो वो तो उसकी वेबसाइट पे बीके मैट्रिमोनी मतलब कन्या के माँ बाप अच्छे कुमार को देखते वो पूरा धारणा वाला होना चाहिए फुल धारणा वाले कुमार चाहिए ताकि बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो जाए, अच्छे घर का होना चाहिए, पैसे भी अच्छे होने चाहिए, नौकरी भी, और परंतु फुल बिके ऐसा कुमार चाहिए, जबकि परसों मुर्गी में क्या आया गटर बस है ना, चलो इसको यहाँ खत्म। अच्छा एक लास्ट का वरदान तो बहुत स्लोगन अच्छा है, भोजन का परे उस दिन मोटापे के बारे में बताया, एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो मोटापे, यहाँ शरीरपन की एक्सरसाइज करनी है और पर कल थाना एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों का भोजन, उस दिन का एक्स्ट्रा भोजन अगर लेते हो तो मोटापा होगा, मोटापे से बचने के लिए एक्स्ट्रा व्यर्थ संकल्प का भोजन नहीं। ओम शांति।